कॉन्शंट ऑब्जेक्ट मुरली 3 दिसंबर 1984 तीसरा ग्रुप ऑब्जेक्ट बाप दादा की कुमारों से मुलाकात कुमार अर्थात सदा समर्थ जहां समृद्धि है वहां प्राप्ति है सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप नॉलेजफुल होने के कारण माया के भिन्न भिन्न रूपों को जानने वाले इसलिए अपने भाग्य को आगे बढ़ाते रहो सदा एक ही बात पक्की करो कि कुमार जीवन अर्थात मुक्त जीवन तो जीवन मुक्त है जो जीवन मुक्त है वह संगम युग की प्राप्ति युक्त होगा सदा आगे बढ़ते रहो और पढ़ाते रहो कुमारों को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए खुशी में नाचना चाहिए वाह कुमार जीवन वाह भाग्य वाह ड्रामा वाह बाबा यही गीत गाते रहो खुशी में रहो तो कमजोरी आ नहीं सकती सेवा और याद दोनों से शक्ति भरते रहो कुमार जीवन हल्की जीवन है इस जीवन में अपनी तकदीर बनाना ये क्या है सबसे बड़ा भाग्य है कितने बंधनों में बंधने से बच गए सदा अपने को ऐसे डबल लाइट समझते हुए उड़ती कला में चलते रहो तो नंबर तो आगे नंबर ले लेंगे अच्छा ओम शांति तो बाबा कह रहे कुमार अर्थात समर्थ समर्थ अर्थात ताकतवर शक्तिशाली बलवान सक्षम सशक्त स्ट्रॉन्ग तो कुमार अर्थात सदा समर्थ जहां समर्थी है वहां प्राप्ति है समर्थी अर्थात शक्ति समर्थ शब्द हिंदी भाषा में और कहीं प्रयोग में नहीं है बाबा के लिटरेचर को छोड़कर सब जगह समर्थता या सामर्थ्य है सामर्थ्य अर्थात शक्ति तो सामर्थ्य शक्ति बल स्ट्रेंथ पावर पर बाबा समर्थता न कहकर सामर्थ्य न कहकर हमेशा समर्थी कहते हैं अन्यत्र हिंदी भाषा में ऐसे शब्द कहीं नहीं है तो जहां समर्थी है वहां प्राप्ति है समर्थी है शक्ति है बल है सामर्थ्य है समर्थता है वहां पर प्राप्ति है सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप एक प्राप्ति नहीं सर्व प्राप्ति स्वरूप अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में यही तुम्हारा गीत है लास्ट संडे की मुरली में था ना यही गीत गाते रहो बालक सो मालिक यही नाचते रहो इस पे ही तो नॉलेजफुल होने के कारण माया के भिन्न भिन्न रूपों को जानने वाले माया जिस जिस रूप से आती है उसको जानने वाले इसलिए अपने भाग्य को आगे बढ़ाते रहो क्योंकि नॉलेजफुल हो गए नॉलेजफुल अर्थात ज्ञानी अर्थात समझदार अर्थात ज्ञानी तो आत्मा बाबा की भाषा में इसलिए अपने भाग्य को आगे बढ़ाते रहो सदा एक ही बात पक्की करो कि कुमार जीवन अर्थात मुक्त जीवन है जो जीवन मुक्त है वह संगम युग की प्राप्ति युक्त है सदा आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो स्वयं भी आगे बढ़ना है तो दूसरों को भी आगे बढ़ाना है जो आगे बढ़ रहा है उसकी निशानी ये है कि वो स्वतः ही दूसरों को आगे बढ़ा रहा है चाहे बोल से संकल्प से या कर्म से ये आगे बढ़ने की निशानी है कुमारों को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए देवेंद्र भाई क्यों नाचना चाहिए खुशी में कुमारों को क्योंकि निर्बंधन है मुक्त गगन का पंछी हूँ तुम्हें उड़ते ही जाना है हंसना नहीं किसी डाली पे सदा खुशी में नाचना चाहिए क्यों नाचना चाहिए क्योंकि वाह कुमार जीवन वाह भाग्य वाह ड्रामा आज बाबा ने भाग्य के लिए चार बातें कही है चार प्रकार के भाग्य, एक है भाग्यशाली, दूसरा है सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली वो सौभाग्य नहीं जो संसार में कहते हैं, यहाँ सौ अर्थात 100 शाब्दिक अर्थ, सौभाग्यशाली। पदम भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली। भाग्य विधाता एक, खजाने भी एक, समय भी एक, वेला भी एक, भाग्य देने की विधि भी एक, फिर भी अंतर है लेने में। कोई ताला नहीं है इस खजाने को, कोई बंधन नहीं है इस खजाने को, कोई चौकीदार नहीं है इस खजाने का, कोई क्यों नहीं है इस खजाने को। ये खजाने सदा ही खुले हुए है। बाप सदा हाजिर नाजिर है, बाप विधाता है, भाग्य विधाता है, भोला भंडारी है, और चाबी भी एक है। फिर भी लेने में अलग अलग सभी। तो वाह कुमार जीवन, वाह भाग्य, वाह ड्रामा। आज की मुरली में बाबा ने कहा इस ड्रामा को भी वरदान है। समय को तो वरदान है ही, वो दूसरी बात, परंतु जब बाबा ने पूछा ऐसा क्यों, तो किसी ने कहा था ड्रामा अनुसार, परंतु बाबा ने कहा ड्रामा को भी वरदान है इस समय। समय अनुसार ड्रामा को वरदान है और ड्रामा अनुसार समय को वरदान है। बाबा ने कहा समय अनुसार ड्रामा को वरदान है, परंतु कहीं और हमेशा कहते रहते हैं ड्रामा अनुसार इस समय को वरदान है। कल की मुरली में भी था, ये कल्याणकारी संगम युग है, इस समय वृक्षपति की दशा है, बृहस्पति की दशा तुम पर है, सारे विश्व में भारत खास, दुनिया आम, राहु की दशा है, तुम पर वृक्षपति की दशा है, बृहस्पति की दशा है, दुनिया में ग्रहण लगा हुआ है, सूर्य का ग्रहण। तो कुमारों को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए। किस नाच की बात है ये? मन का नाच है ये। तो ये जब मन नाचे खुशी में, क्योंकि उसमें इतनी खुशी भरी हुई है कि उसकी ये जो खुशी है उसी को ही नाच कहा हुआ है, मन का यह नाच है। वाह कुमार जीवन, मुख की तो यहाँ बात ही नहीं, सारा खेल अदृश्य है। वाह कुमार जीवन, वाह भाग्य, वाह ड्रामा, वाह बाबा, वाह वाह निकल रही है हर एक के बारे में। किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है। दो तीन दिन पहले वरदान में था ना, गृहस्थी क्या कहते हैं, कंप्लेंट करते हैं, दो कंप्लेंट, और उसकी चार विधि बताई थी, संबंधी मानते नहीं, सुनते नहीं, एक, और दूसरी कंप्लेंट थी संग खराब है, अच्छा संग नहीं है। बाबा ने चार उत्तर दिए थे इसके लिए, कौन कौन से ये जो प्रश्न पूछे बाबा को, दो कंप्लेंट है, तो बाबा ने इसके चार उत्तर दिए थे, कौन कौन से। एक तो चौथे नंबर का था कि बाप के संग में रहो। अब पहला, दूसरा और तीसरा बताओ। श्रेष्ठ मत से ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप के वरदानी बन, अचल बनो, अर्थात श्रीमत के आधार से। अगर श्रीमत को फॉलो कर रहे तो ये सारी कंप्लेंट नहीं रहेंगी। ये श्रीमत से ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप बन, शक्ति स्वरूप के वरदानी बन, अचल बनो, पहला। दूसरा और तीसरा, अपने सत्वगुणी पार्ट में स्थित रहना, तीसरा। और दूसरा, सबके पार्ट को साक्षी होकर देखना। तो ऐसे थे चार। मतलब सबने पढ़े, इस बार के वरदान बड़े आसान थे, पिछले बार के थोड़े कम मुश्किल थे। तो कंप्लेंट समाप्त, किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी के प्रति भी कोई कंप्लेंट नहीं है, ना सीनियर ना जूनियर, ना यज्ञ ना यहाँ और कोई, यहाँ होने वाली कोई भी बात की कंप्लेंट नहीं है, ना भोजन ना स्थान ना एकोमोडेशन, कोई भी ताला नहीं है। पांच प्रकार के ताले सुनाई आज बाबा ने, कोई भी ताले नहीं है यहाँ पर, ये जो खजाने खाली है, ताले नहीं है, और बाद में मुरली चल रही है चाबी पर, एक जगह बोला है कोई ताले नहीं है, परंतु वो ताले अलग प्रकार के ताले हैं। पहला ताला, हम प्रवृत्ति में रहते हैं, ये कोई बहाना नहीं दे सकता, कोई कारण का बंधन नहीं, कारण का ताला नहीं, हम प्रवृत्ति में रहते हैं। एक पीछे आए, दो, पहला पीछे आए, दूसरा प्रवृत्ति में रहते हैं, तीसरा ये रोग का कारण, तीसरा चौथा आयु, और पांचवा पढ़ाई और स्टेटस पद।
कम पढ़े हैं
हाँ, वही उसमें फिर विस्तार कर सकते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे आगे जाएंगे इस मार्ग में। बाबा ने कहा बहुत अच्छा, पढ़े लिखे नहीं है, तो ज्यादा पढ़े लिखों को यहाँ शिक्षा, यहाँ क्या है, जो पढ़ा है वो भूलना पड़ता है। 1962 में मूवी रिलीज हुई थी, बाबा ने किस बाबा को किसी ने कहा था, बाबा ये मूवी रिलीज हुई है, मैं चुप रहूंगी। बाबा ने उस मुरली को साकार मुरली, उस फिल्म को के टाइटल को साकार मुरली में कहा था कि माताओं के लिए स्लोगन है मैं चुप रहूंगी। तुम्हें ज्यादा पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, मैं चुप रहूंगी, ये सन्यासी तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। तो पांच प्रकार के ताले आज बजाए बताए बाबा ने कि ये जो खजाने हैं इसमें कोई भी ताला लगा हुआ नहीं, कारण ताला का कारण नहीं दे सकते, कारण का बंधन यहाँ पर नहीं है, पांच प्रकार के ताले खुले हैं। फिर वो चौकीदार वो सब बाकी बातें हैं। तो किसी के प्रति भी कोई कंप्लेन का भाव नहीं है, कृतज्ञता का भाव, उठते ही कृतज्ञता का भाव हरेक के प्रति। जैसे ही मन में कृतज्ञता का भाव होता है, निगेटिविटी जो होती है वो विलीन हो जाती है, मन में नकारात्मक भाव जो है वो वहां विसर्जित हो जाता है। जैसे ही हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे कितना फायदा हुआ, इसने मुझे कितना सिखाया, सारी दुनिया तो तारीफ करने वाली पड़ी है, ये एक ही तो है कि जो बार बार याद दिलाता है, उसी ने सबसे ज्यादा सिखाया है। वो तारीफ करने वाले तो कभी नहीं सिखा सकते, उससे तो शायद अभिमान और अहंकार और मैं बड़ा संतुष्ट और तृप्त होता है। हाँ, बिना फी के डॉक्टर कितना अच्छा इलाज करता है, बार बार याद दिलाता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुम्हारा ये भी ठीक नहीं है, तुम ये बहुत लेट आते हो, तुम ये ठीक से बोलते नहीं हो। सबने कहा बहुत अच्छा बोला, उसने कहा ये पॉइंट ठीक नहीं थी, देख लेना अगली बार। ऐसा कोई सिखाएगा? क्रिटिक, क्रिटिक होते हैं ना, टीका टिप्पणी करने वाले, वही तो ज्यादा सबसे सिखाते हैं हमको, नहीं तो सीखेंगे कैसे। किसी एक लेखक था, एक बहुत बड़ा लेखक, उसने एक बार एक लेख लिखा न्यूज़पेपर में, तो किसी ने उस लेख की ऐसी जबरदस्त निंदा की, एक स्त्री ने बहुत जबरदस्त निंदा की। उसने जब देखा कि मेरे लेख के ऊपर ऐसा सब लिखा इतना क्रोध आया उसको, इतना क्रोध आया कि मेरा जो लेख, इतना मैं हमेशा से लिखता आया हूँ, और उस लेख के बारे में इतना, जैसे उसका पूरा ये कर दिया, खंडन कर दिया पूरे के सारी पॉइंट्स, इतना क्रोध आया उसको, उसने सोचा अभी कुछ करता हूँ इसका। एक लेटर लिखा उस स्त्री को उसने, बहुत गुस्से में और बहुत ही खतरनाक लेटर लिखा, पर बात यह हुई कि वो पोस्ट करना भूल गया तो वो वैसा ही पड़ा रहा क्योंकि हमारा लिखा हुआ लेख, लेख तो श्रेष्ठ था ही, उसमें कोई विवाद नहीं, परंतु वो मेरा लिखा हुआ था ना, वो मेरा हो जाने की वजह से उसकी अगर कोई निंदा करे, जैसे मेरा भाषण, मेरा लेख, या मेरी बनाई हुई कोई वस्तु, मेरी बनाई हुई कोई मूर्ति, मेरा बनाया हुआ चित्र, मेरी मेरी बनाई हुई रंगोली, ये जो चीज है इसने जब मेरा बनाया हुआ है, हमने इतनी मेहनत की, और कोई आके ऐसे ही निंदा कर दे, ये अहंकार को स्वीकार नहीं है। तो वो एक ऐसा खतरनाक लेटर लिखता है उसको कि पूरा गुस्सा उसमें निकाल देता है, और फिर पर पोस्ट करना भूल जाता है। अभी दूसरे दिन जब आकर देखता है, अरे ये लेटर तो पोस्ट ही नहीं किया जल्दी जल्दी में, परंतु अब थोड़ा गुस्सा थोड़ा कम हुआ है, सोचता है कि पर मैं छोड़ूंगा नहीं उसको क्योंकि मेरे लेख की निंदा करने वाले को ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगा, आज तक किसी ने की नहीं है, सबने हमेशा तारीफ ही की है, यू 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 कितने लाइक है, हमेशा हम मोर्चा संभाले बैठते थे, कितने लाइक हुए और कितने डिसलाइक, फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पे मोर्चा संभालते हैं ना कुछ लोग इस तरह के, कि कितने आए और कितने रिस्पॉन्ड किया हुआ, हमने पोस्ट तो कर दिया अभी तक कुछ आया क्यों नहीं सारी रात तो उसी में चली जाती है मोर्चा संभालने में, लाइक कितने और डिसलाइक कितने हैं। तो उस आधार से हम अपनी गणना करते हैं कि हमने जो बोला और कहा और जो कुछ किया वो अच्छा है या बुरा है। ये मनुष्य की वर्तमान स्थिति है दूसरों के ओपिनियन के आधार पर कौन सी मोर्चा संभालने की तो वो उसने सोचा कि उसको छोड़ूंगा नहीं, परंतु लगा कि अभी गुस्सा थोड़ा शांत हो गया तो थोड़ा और रुक जाता हूं, तो एक हफ्ता रुक ही गया। और एक हफ्ते के बाद उसका लेख, उसकी जो टीका टिप्पणी थी वो क्रिटिक फिर से पढ़ा, और बाद में लगा रे उसने बात तो सही की है उसको लगा कि ये जो है बाद में ये तो सही बातें है सारी, मैं ही गलत था, कहानी विदेश की है, बाद में उसने उसी से शादी की वो दूसरी बात है तो जो हमारी टिका करते हैं, टिप्पणी करते हैं, करेक्ट करते हैं, किसी की आदत होती है ना, आदत अभी वो दूसरी बात है, उनकी आदत ही है, उनका कितना फायदा हो रहा है वो तो बिल्कुल वो दूसरी बात है, उनका शायद कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है उसमें, क्योंकि वो तो हर एक को करेक्ट करते बैठते हैं, हर एक को श्रीमत सुनाना ही उनका महानतम कर्तव्य है, उन्होंने ये अपने ऊपर जिम्मेवारी ले ली है कि सबको ठीक करना है हमको, एक एक को ठीक करके छोड़ेंगे इस यज्ञ के, हर एक को हमें श्रीमत सिखानी है, ये जैसे अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका क्या होगा वो छोड़ दो, पर उनके वजह से हमें तो फायदा है ही है, क्योंकि नहीं तो हमें कौन सिखाएगा, कौन अपने संबंध खराब करना चाहता है इस दुनिया में, हर एक चाहता है कि मैं तारीफ करूं। ऐसे बहुत ही रेयर और निराले और अनूठे व्यक्ति इस यज्ञ में, इस संसार में है, जो निरंतर हमें सुधारे, हमारी करेक्शन करे, हमें बताए हम कहाँ रॉन्ग है, हमको लगेगा हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी कोई सेवा की, उसमें भी दोष निकालने वाले ऐसे को तो चरणों में मतलब फूल चढ़ाने चाहिए, नहीं तो हमें कौन सिखाएगा और सुधारेगा। तो नो कंप्लेंट्स,
सुप्रभात।
बाबा कह रहे हैं सदा गीत गाते रहो, सदा नाचते रहो। वाह कुमार जीवन, वाह भाग्य, वाह ड्रामा, वाह बाबा, यही गीत गाते रहो, खुशी में रहो तो कमजोरी आ नहीं सकती, सेवा और याद दोनों से शक्ति भरते चलो, सेवा भी ऐसी कि जिसमें शक्ति भर जाए, याद भी ऐसी कि याद करने के बाद लगे कि शक्ति का स्तर, शक्ति का ग्राफ बढ़ चुका है। कुमार जीवन हल्की जीवन है, इस जीवन में अपनी तकदीर बनाना यह सबसे बड़ा भाग्य है, कितने बंधनों में बंधने से बच गए, सदा अपने को ऐसे डबल लाइट समझते हुए उड़ती कला में चलते रहो। बंधनों में बंधने से बच गए, कुमारियों को आज पापा ने कहा है उस फैमिली में अगर जाती तो वो परिवार कल्याणी होती केवल, अभी यहाँ हो विश्व कल्याणी, एक अनेकों का कल्याण करने के जगाने की निमित्त बन चुकी है। अभी तक भक्ति में गायन और पूजन होता है, परंतु खंडित मूर्ति नहीं, अखंडित मूर्ति, संपूर्ण पवित्रता, स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं, ऐसी निशानी है कुमारियों की। तो ऐसे डबल लाइट समझते उड़ती कला में चलते रहो, तो आगे नंबर ले लेंगे। ओम शांति, आ जाओ मोर्चा संभालने के लिए तो अभी एक हफ्ते की मुरली, 6 दिन की मुरली रिवाइज करेंगे संतोष भाई और कमल भाई द्वारा। कमल अर्थात पदम, पदम अर्थात पद्मा, पदम भाग्यशाली, पद्मों के आज बाबा ने 2 अर्थ बताए, एक पदम अर्थात न्यारापन, क्योंकि बाप न्यारा है इसके लिए बाबा को न्यारापन पसंद है, इसके लिए न्यारा हो गए। दूसरा पदम अर्थात कदम, कदम पर पदम की कमाई करने वाले, एक कदम भी पदम की कमाई के से वंचित ना हो, जो वरदान में भी कहा इसके लिए एक एक कदम सावधानी से उठाओ। ओम शांति।
शांति। हाँ इधर ही रखो तो अभी हम सब मिल करके इस हफ्ते की जो मुरली साकार मुरलियाँ हुई उसको रिवीजन करेंगे।
मैं नहीं
तो इस मुरली में 3 दिन जो सोमवार मंगलवार और बुधवार है उसके उसका अभ्यास मुझे मिला हुआ है जो रिवाइज करने का। इस हफ्ते में इन 3 दिनों में बाबा ने बहुत कुछ बातें बताई, जैसे कि लोकप्रिय या प्रभु प्रिय कैसे बन सकते हैं, उसके बाद विश्व कल्याणकारी कैसे बने, और बाबा ने इसमें अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी बनने के लिए क्या क्या करना है ये भी बातें बता दी है। फिर उसके बाद बाबा ने पवित्रता की जो गहराई है उसके बारे में श्लोगों में बोला हुआ है। अभी रमजान का महीना चल रहा है तो कुर्बानी दी जाती है, तो कुर्बानी भी सच्ची कुर्बानी कौन सी है उसके बारे में बताया हुआ है। और हर एक जने सेवा तो करता है लेकिन सेवा करते हुए थकावट से मुक्त कैसे रहे इसके बारे में बोला हुआ है। इस समय संसार में तपत चल रही है कि इसमें हर एक छोटे से लेकर के बड़े बुजुर्ग सब तप रहे हैं, वो कौन सी तपत है और उस तपत को खत्म करने की विधि वो भी बाबा इस मुरलियों में बता रहे हैं। तो हम शुरू करते सोमवार की मुरली में कि जिसमें बाबा ने महावाक्य में कहा हुआ था कि मीठे बच्चे बाबा आया हुआ है इस दुनिया से विकार की तपत बुझाने, विकार की तपत बुझाए शीतल बनाने, ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। तो इसी मुरली का जो प्रश्न था उसमें बाबा ने कहा था, पूछा था कि कौन सी तपत है कि जो सारे संसार को जला रही है। तो उसके उत्तर में बाबा ने कहा कि जो विकारों काम विकार की तपत है वो सारे संसार को जला रही है, सब काम अग्नि में जल करके काले बन गए हैं। फिर बाबा ने कहा कि मैं आया हूँ ज्ञान की बरसात कर सबको शीतल बनाने के लिए। बाबा ने यहाँ एक उदाहरण भी दिया कि जैसे बरसात होती है तो धरती की तपत जो है वो शीतल हो जाती है, इसी रीति से इस ज्ञान बरसात से 21 जन्मों तक यह विकार की तपत जो है वह शीतल हो जाएगी। बाबा कहते कि इस ज्ञान की बरसात से 5 तत्व भी सत्व प्रदान हो जाते हैं, तो साथ साथ बाबा ने कहा कि भविष्य में कोई भी तपत नहीं होगी। फिर इस मुरली का जो वरदान है कि जिसमें बाबा ने कहा हुआ है साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। तो अभी बाबा ने इस लोकप्रिय या प्रभु प्रिय कैसे बन सकते उसका विस्तार किया हुआ है जो विश्लेषण में बाबा ने कहा। जैसे साइंस वालों ने इन्वेंशन की है कि लिखी हुई चीज मिटाने की, साफ करने की, जो मालूम भी ना पड़े कि कुछ लिखा हुआ भी था, इसलिए इस रीति से अभी इस ज्ञान मार्ग में बाबा कौन सा साधन देते हैं, साइलेंस की शक्ति, कि जिसके द्वारा जो भी दिन भर में रोज अपने हाथों से व्यर्थ कर्म या मन से व्यर्थ संकल्प हो जाते हैं उसका जो रजिस्टर है वो रोज के रोज साइलेंस की शक्ति के द्वारा साफ करना है। ये बाबा विधि बताई कि जिससे अपना रजिस्टर जो है वह साफ रहेगा और लोग प्रभु प्रिय भी बनेंगे और साथ साथ दैवी लोकप्रिय भी बनेंगे। आगे तो उसके बाद बाबा ने कहा कि सच्चाई और सफाई जो है वो सबको पसंद है, सच्चाई और सफाई बाप दादा को भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो बाबा कहते हैं कि रोज के रजिस्टर को जो भी दिन में व्यर्थ कर्म या व्यर्थ संकल्प हुए उसको साइलेंस की शक्ति के द्वारा समाप्त करो, बीती सो बीती करो, उसकी लीक भी दूसरे दिन न हो, लीक लीकेज वो वाला लीक जरा अच्छा वो दूसरे दिन भी न हो।
इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला
कोई तो लिंक समझ रहे हैं।
तो बाबा कहते कि उसका दूसरे दिन भी कुछ भी लीक न हो, तो उससे क्या होगा, एक तो रजिस्टर साफ रहेगा और दूसरी बात साथ साथ में साहेब जो है वह राजी रहेगा, बीती को बीती करने से वही बीती को बीती करके फिर फुल स्टॉप, तो साहेब राजी होंगे। फिर बाबा ने इस मुरली का स्लोगन जो है उसमें बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प चलना या किसी और आत्मा के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। फिर उसके बाद 28 तारीख की मुरली जो है, जिसमें बाबा ने कहा हुआ है कि मीठे बच्चे, अमर बाबा आया हुआ है, इसलिए तो तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने कि जिससे क्या होगा, तीनों लोकों और तीनों कालों को जान सकेंगे। इस मुरली का जो प्रश्न है, जिसमें बाबा ने कहा हुआ है रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं, तो इसका उत्तर बाबा ने कहा हुआ है कि पढ़ाई के आधार से। यहाँ जो वर्षा मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से, पढ़ाई के आधार से वर्षा मिलता है। जो बच्चे जितना अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, उनको उतना ज्यादा वर्षा मिलता जाता है। बाबा ने यहाँ एक लौकिक का उदाहरण भी दिया, जैसे लौकिक बाप होता है वह बच्चों को वर्षा देता है, बच्चों को नहीं दिया करते थे पहले, सिर्फ बच्चा जो होता है, लड़का होता है, उनको ही दिया करते थे। लेकिन बाबा ने यहाँ कहा कि यहाँ जो है ये पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए सर्व रूहों का अधिकार है बाप से वर्षा लेने का। इस मुरली में गीत था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। उसके बाद इसका जो वरदान है, ये वरदान, इसका वरदान है रूहाप और रहम, इन गुणों के द्वारा। देखो ना ठीक है, चलो तो रूहाप उसके बाद उसका विश्लेषण है कि रूहाप विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो गुणों की आवश्यकता है। इसके विश्लेषण में बाबा ने कहा हुआ है कि वो कौन कौन से दो गुण हैं, एक तो रूहाप, ईश्वरीय रूहाप, और साथ साथ में रहन। ये दो गुण जब होंगे, इन दोनों गुणों की समानता भी हो और साथ साथ भी हो, ये चेक करना है। और अब जब दिनचर्या में या कर्म में ये दोनों साथ साथ हो, तो इससे क्या होगा, रूहानी की स्टेज बन जाएगी। फिर बाबा ने यहाँ कहा कि जैसे शक्तियों का उदाहरण दिया बाबा ने, कि शक्तियों का चित्र जो होता है उसमें ये दोनों गुण समान रूप में दिखा देते हैं, कम ज्यादा नहीं दिखाते बल्कि समान रूप में दिखाते हैं, एक तो रहन और दूसरा रूहाप। तो इस ये दिखाते हैं, तो बाबा कहते कि जितना जितना इनकी समानता होगी उतना उतना तुम विश्व कल्याणकारी बनते जाएंगे। फिर श्लोकों में बाबा बता रहे कि बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्पों को कुर्बान कर, न्योछावर कर देना, यही सच्ची कुर्बानी है। फिर उसके बाद तीसरा दिन कि जो बुधवार है, जिसमें बाबा ने कहा हुआ है मीठे बच्चे स्वस्थिति के द्वारा, इस मुरली का वरदान है स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति सर्व परिस्थितियों को सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भवन, जिसके विश्लेषण में बाबा ने कहा कि जितना जितना तुम स्वस्थिति के द्वारा अव्यक्त स्थिति के द्वारा परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति आती जाएगी, इसकी आदत बनती जाएगी, उतना उतना आप अदालत से जाने से बच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि इससे यह जब नेचुरली नेचर बन जाएगी, नेचर और नेचुरल बन जाएगा, उतना नेचुरल कैलामिटीज होती जाएगी, पर्दा खुलता जाएगा। ओम शांति, इसका स्लोगन
भी है, मुरली में स्लोगन है, उसमें
स्लोगन था कि व्यर्थ मतलब कर्म करते हुए थकावट से मुक्त कैसे हो, तो स्वयं को निमित्त करणहार समझने से थकावट से मुक्त हो जाएंगे।
अभी आप उधर बैठे मुरली लेके और मुरली उधर दे
शांति
भाई, सबके भेदभाव तो बरतेंगे चलो।
ओम शांति। पहले तो जो एक लेसन सीखा कल कि सब काम जो है कोई भी मिले वो पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा पोस्टपोन किया, सोचा 8 बजे शुरू करूंगा, लेकिन 8 बजे जैसे ही शुरू करने बैठा तो कुछ अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन सेवा आई और उसके बाद फिर सुबह सुबह ही पढ़ा। फिर भी याद है, देखते हैं कितना अभी बोला जाता है। जो 30 तारीख की मुरली है उसमें बाबा ने क्या कहा सब बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ ज्ञान चर्चा के लिए बैठे हैं।
फिलहाल
बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सूर्यवंशी पद पाने के लिए क्या करना होगा, अपना सब कुछ स्वाहा करना होगा। सूर्यवंशी पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। बाबा ने उसमें प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों से अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं है, क्यों? तो उसका आंसर क्या है? नहीं तुम बच्चों से ज्यादा खुश नसीब कोई भी नहीं है, क्यों? क्योंकि तुम गुरु अपने तुम्हारे सम्मुख गुरु बैठा है, और जिससे तुम्हें 21 जन्मों के लिए सदगति मिलती है, और बाहर के लोग तो गुरु को जानते भी नहीं है कि वो कौन है, इसलिए तुमसे अधिक खुश नसीब कोई भी नहीं हो सकता। और गीत कौन सा था 30 तारीख का? हाँ जी, हाँ वो उसमें है, सार में, उसके अंदर भी है क्या? बाप टीचर, आई थिंक सार में है वो, कि बाप टीचर और सतगुरु, ये समझना है, कंट्रास्ट समझना है कि बाप क्या होता है, बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है और गुरु से क्या मिलता है। और गीत था खुश नसीब, बड़ा खुश नसीब है। और उसका स्लोगन क्या था? स्लोगन कल्प कर्म योगी वह है जो कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर कर्म करते हुए सदा उपराम रहे। उसका स्लोगन ये था। और वरदान मायावी श्रेष्ठ मत के आधार पर, जो भी बताया, श्रेष्ठ मत के आधार पर मायावी संदोष से परे रहने वाले शक्ति स्वरूप भव। कई बच्चों की कंप्लेन विस्तार है, कई बच्चों की कंप्लेन रहती है कि संबंधी सुनते नहीं, पहली कंप्लेन। और दूसरी कंप्लेन कि संग अच्छा नहीं है इसलिए शक्तिशाली बन नहीं सकते, लेकिन बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ मत के आधार पर शक्ति स्वरूप और ज्ञान स्वरूप के वरदानी बन अपनी स्थिति को अचल बनाओ, पहला तो ये। और दूसरा साक्षी होकर हर एक का पार्ट देखो, और तीसरा अपने सतोगुणी पार्ट में स्थित रहो, और चौथा बाप के संग सदा रहो, सदा बाप के संग रहो तो माया के संग का रंग नहीं लगेगा। और उसमें जो मुरली थी उसमें अंदर बाबा ने किस बारे में बात की? गुरु के बारे में बात की, आई थिंक 30 को गुरु के बारे में, तीस गुरु के बारे में, कि भारत में अनेक गुरु हैं। जैसे जो पत्नी होती है वो अपने पति को गुरु मानती है, ईश्वर मानती है, किसी के 500 फॉलोअर्स हैं, किसी के 100 फॉलोअर्स हैं, किसी के 50 हैं, किसी के करोड़ों हैं। फिर बाबा ने एक गुरु को याद किया, आगा खान, जो खोजों का गुरु है। फिर बाबा ने कहा कि उनको तो हीरे में तोलते हैं, है ना, फिर हीरे में तोला, सोने में तोला, प्लेटिनम में भी तोला, लेकिन तुम इस सदगुरु को किस में तोलोगे? बाबा ने पूछा, हीरे में तोलेंगे? मैंने कहा ये इतना वंडरफुल है सदगुरु कि इसका वजन ही नहीं है, सूक्ष्म है और इसका वजन नहीं है। और फिर बाबा ने कहा कि बाप टीचर और सदगुरु का कंट्रास्ट अच्छे से समझना है, कि बाप से हमें क्या मिलता है, गुरु से हमें क्या मिलता है, टीचर से हमें क्या मिलता है। और नेहरू जी को इसी में याद किया, या एक में, ऐसा याद नहीं है कौन से दिन याद किया, लेकिन नेहरू जी को भी याद किया कि नेहरू कितने वो बिगर ताज के, बिगर ताज के बादशाह हैं वो,
जरूर पिछले जन्म में करना,
जरूर पिछले जन्म में उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। हाँ जी,
शेरवानी, शेरवानी,
हाँ वो तो दीदी ने एक्सप्लेन किया कि वो शेरवानी पहनते थे, और साथ में उनका जो शेरवानी वो ड्राई क्लीन होने के लिए पैरिस जाता था, वो तो शिलू दीदी ने एक्सप्लेन किया उसको। हाँ मस, वो उसी मुरली में था मस। बाबा ने कहा कि बाबा ज्ञान का सागर है, अगर सागर को मस बनाओ, स्याही बनाओ, और पूरे जंगल को कलम बनाओ, तो भी जितना है वो लिखा नहीं जाएगा, और अगर जितना बाबा ने शुरू से बोला है वो लिखने लगे तो कई पुस्तकें बन जाएंगी, बाबा ने ये कहा। और अगले दिन फिर बाबा ने कहा, हाँ पढ़ाई का तंत्र है मन मना भव। फिर अगले दिन 1 तारीख को मीठे बच्चे, बाप जैसा निष्काम सेवाधारी और निरहंकारी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बाप बच्चों को स्वर्ग की बादशाही दे फिर वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों को कौन सा पैगाम देना है, कि दुख हरता सुखदाता बाप, तुम सुखदाता बाप के बच्चे हो इसलिए तुम किसी को दुख दे नहीं सकते, और जो इस पैगाम को अच्छे से अपने जीवन में धारण करेंगे उन्हें 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। फिर स्लोगन में था कि कर्म करते हुए कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव से मुक्त रहना ही कर्मातीत बनना है। वरदान में था स्व प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लोमेकर बनने वाले ही लोमेकर बनकर पीस मेकर सो न्यू वर्ड मेकर भव। फिर बाबा ने कहा कि जो स्वयं लोफुल रहते हैं वही दूसरों के प्रति लोफुल रह सकते हैं, जो स्वयं लो ब्रेक करते हैं वो दूसरों को लो सिखा नहीं सकते। इसलिए सुबह से लेकर रात तक चेक करो कि मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, और चौथा क्या था, मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, और चौथा संबंध में या सहयोग में या सेवा में। तीन बाबा ने इकट्ठा इसमें बोला, संबंध में, सहयोग देने में या सेवा में मैं कितना लोफुल रहता हूँ। बाबा ने कहा जो लोफुल है वो कभी लो ब्रेक नहीं कर सकता, जो लो मेकर है वो कभी लो ब्रेक नहीं कर सकता, और जो लो मेकर है वही पीस मेकर और न्यू वर्ल्ड मेकर बन सकता है। और फिर बाबा ने मुरली में क्या क्या बोला, बाबा ने कहा थप्पड़ के बारे में बात भी करी ना, बाबा ने कहा माया ऐसे थप्पड़ मारती है, मुंह बाबा की तरफ करती है लेकिन माया ऐसा थप्पड़ मारती है कि दूसरी तरफ हो जाता है। जैसे लोग कहते भी हैं कि जब गुस्से में कहते हैं कि ऐसा मारूंगा कि तुम्हारा मुंह ही फेर दूंगा। फिर बाबा ने इसमें एक और बहुत रमणीक बात करी कि जिसने शराब कभी पी नहीं होगी तो वो शराब का टेस्ट कैसे बता सकता है। ऐसे ही जिसने ज्ञान को समझा नहीं या ज्ञान जिसने लिया ही नहीं उसको ज्ञान के महत्व का नहीं पता होगा। हाँ, मुरली के अंदर का
दिनों में जैसे कि
अभी एक स्लोगन वरदान रह गया। वैसे
बाबा ने यज्ञ के बारे में बात की थी कि जिसमें लौकिक यज्ञ के लौकिक में तीन यज्ञ रचते हैं, तो कौन कौन से यज्ञ रचते हैं, रामायण यज्ञ, रुद्र यज्ञ और गीता यज्ञ। लेकिन अभी रुद्र बाबा कर कौन सा यज्ञ रचा है, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, यही अंतिम यज्ञ है, इसी से ही विनाश वाला प्रज्वलित होती है। फिर ब्रह्मा कुमारी उनके लिए क्या कहते हैं, सर दुनिया वाले क्या कहते हैं,
विनाश करके छोड़ेंगे।
हाँ, ये तो आए विनाश कराने के लिए, विनाश करके विनाश करते रहते हैं
ब्रह्मा कुमारी।
हाँ, और क्या कहा है बाबा ने, ICS के एग्जाम उसको दो बार याद किया था बाबा ने, एक तो ये ऊंची पढ़ाई ही है इसके लिए, और दूसरा
क्या पद मिलेगा।
हाँ हाँ, जैसे उस एग्जाम में पहले एग्जाम क्या मतलब क्या क्या क्वेश्चन आएंगे नहीं बताए जाते, इस रीति से ये भी पढ़ाई में नहीं बताए जाते इस रीति। और
दो तारीख का जो कल का स्लोगन क्या था कि सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, यही स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। तीन बार स्मृति था इसमें कि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, यही स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। और वरदान कल का
पुरुषार्थ
को यथार्थ रूप से यूज करने, यथार्थ अर्थ, हाँ पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति यूज कर आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ,
उतने मेहनत करने की जरूरत नहीं, बीच वाला बोलो,
श्रेष्ठ पुरुषार्थी श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। फिर अंदर बाबा ने क्या कहा, हाँ अब याद किया है तो नहीं, वो क्योंकि इजी था तो इसलिए, वैसे ऊपर वाला याद नहीं रहता। अंदर क्या था, पुरुषार्थ, बाबा ने कहा कि कई बार पुरुषार्थ शब्द को गलत रीति यूज करते हैं, हार खाने पर या असफलता खाने पर उसको यूज करते हैं, उसको ढाल बना देते हैं। हाँ, उसको ढाल बना देते हैं। और फिर बाबा ने कहा, लेकिन जो यथार्थ श्रेष्ठ पुरुषार्थी है वो कभी हार खा नहीं सकता, क्योंकि पुरुषार्थी शब्द का अर्थ है सदा अपने सदा पुरुष की स्थिति में, अर्थात आत्मा स्थिति में रहकर सब कुछ करना, कर्म करने वाले जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वे सदा अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए सदा आगे बढ़ते रहते हैं, वे कभी रुकते नहीं और कभी हिम्मत उल्लास कम नहीं होता, छोड़ते नहीं, हिम्मत उल्लास कभी छोड़ते नहीं। और
इन तीन मतलब इस हफ्ते में मुरलियों में बाबा ने कथाओं के बारे में बोला था, कौन कौन सी कथाओं को याद किया था?
तिजरी
की कथा, अमरनाथ की कथा और सत्यनारायण की कथा। और बाबा ने एक ही शब्द मतलब लाइन का था कि बाबा प्रश्न पूछते हैं किस लिए?
बुद्धि चलाने के लिए,
बच्चों की बुद्धि चले इसके लिए। कौन बाबा ने और क्या कहा बाबा ने?
ज्ञान का एक टुकड़ा ही सद्गति का।
हाँ,
सर्वोदय लीडर्स
डाका,
माता
सब पर दया करने वाले,
दो सबसे डाका, एक डाका पौड़ी और दूसरा डाका डाका, उसी मुझे दो डाका दे, एक डमर वाला डर एक दूसरा वाला डर।
और
ढाका मतलब वो पौड़ी,
अच्छा खाए अच्छा पहने ऐसे वाले शब्द नहीं होने चाहिए। यहाँ हम वनवाह में हैं। और अगर यहाँ ये सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी करेंगे तो भविष्य में प्राप्ति जो है बहुत कम हो जाएगी, अभी कच्चा फल खाएंगे तो। हाँ, आशीष भाई विवेकानंद के बारे में क्या बोला था बाबा ने इस मुरलियों में? रामकृष्ण परमहंस, हाँ,
गुरु की आत्मा
राम स्वामी विवेकानंद को ऐसे महसूस हुआ था, इस लिटरेचर में
बाबा कहते हैं हमेशा मुरलियों में, परंतु वो
इस लिटरेचर में
वो बाबा ने ना किसी साधु संत से कथा में सुना होगा,
क्योंकि कभी कभी क्या आता है अरविंद के बारे में, इनके बारे में भी आता है,
वो जब किताब पढ़ते थे तो वो नौकर को दूर कर देते थे, वो पढ़े लिखे ही नहीं थे
अरविंद,
नहीं अरविंद ने कभी रामकृष्ण वाले के में भी ये कहा है बाबा ने, पर इसका वर्णन कहीं पर भी नहीं है, शायद ये ब्रह्मा बाबा के अनुभव है, बहुत सारी बातें उसमें।
और वैराग्य दो प्रकार के होते हैं, हद का और बेहद का। हद के वैराग्य से सदगति नहीं मिलेगी, लेकिन बेहद के वैराग्य से सदगति मिलेगी,
ज्ञान भक्ति वैराग्य,
ज्ञान भक्ति और वैराग्य। और बाबा ने कहा वहाँ पर सब बच्चे बहुत फर्स्ट क्लास होंगे, किसी में भी कोई क्या नहीं होगी, एक चीज नहीं होगी, चंचलता, वहाँ पर कोई भी चंचलता नहीं होगी, सत्युग में मच्छर मक्खी नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर फर्स्ट क्लास जो अमीरों के घर होते हैं, बाबा ने कहा वहाँ कोई मच्छर मक्खी अंदर आ भी नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, तो वहाँ पर भी मच्छर मक्खी दुख देने वाला या गंध मचाने वाला कोई एंट्री नहीं होगी। बाबा ने कहा सन्यासियों को मुक्ति की सौगात मिलती है। हाँ, कल बाबा ने पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि कहा कि बाबा आए हैं सबको पारस बुद्धि बनाने, अर्थात देवी देवता बनाने, रूहानी पंडा, मैं सबको साथ ले जाऊंगा बाबा ने कहा। हाँ, मैं ही लिबरेटर हूँ, मैं ही पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ओबीडियंट सर्वेंट, एक कल कुछ और ओबीडियंट टीचर, कल बाबा ने कहा मैं ओबीडियंट फादर,
परसों की मुरली में था वो की पूरा वाक्य था, आई एम योर ओबीडियंट फादर,
आई एम योर ओबीडियंट फादर,
गुलमय गुलाम तेरा, मई गुलाम तेरा, ऐसा गाते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं अभी तुम बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ ओबीडियंट सर्वेंट बन करके।
देखो वो लाल लाइन रह गई हो तो
बहुत सारी रही हुई है। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण,
तो समझा जाएगा मुरली पढ़ रहे हैं,
नहीं तो पकड़ के दुबो दो रंगना।
और बाबा ने कहा सर्वोदय लीडर के बारे में, जैसे बाबा ने कहा कि बाकी तो है हद पर रहम करने वाले, लेकिन बाबा है बेहद पर रहम करने वाले, सबको सत्व प्रधान बनाते हैं और तत्वों को भी बाबा तत्व प्रधान बनाते हैं, ऐसा रहम कोई नहीं कर सकता। सर्व पर दया करने वाले सर्वोदय
तीर्थ बाबा का महावाक्य कि ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा आकर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं, ऐसा नहीं कहते, बल्कि ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मण बनते हैं डायरेक्ट।
घट में नोला कता है।
फिर कल की मुरली में ये भी कहा था ना कि जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण।
भूले हुए
रास्ता, सतयुग से ही, सतयुग से ही रास्ता भूले हुए, क्योंकि बाप को नहीं जानते।
हाँ, विराट रूप के बारे में बाबा ने कहा कि उसमें जो है ब्राह्मण और चोटी और शिव बाबा को नहीं दिखाया है, तो उसमें भूल है। और बाबा ने कहा कि मैं ड्रामा दो बार दो मुरली में बाबा ने बोला, कल और परसों और उससे पहले, कि मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। मैं ड्रामा के बिना, ऐसा नहीं कि भगवान ड्रामा के बिना कुछ कर सकता है, अगर कोई बीमार होता है या किसी का कोई ऑपरेशन है, ऐसे नहीं कि बाबा छुड़ा देंगे। कर्म भोग जिसका है वो तो सबको चुकतू करना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा।
फिर बाबा ने कहा कि सूर्य चांद ये जो है इस मांडवे को रोशनी देने के लिए है, न कि देवताएं हैं, लेकिन भक्ति में उनको देवताएं मान करके उनकी पूजा वगैरह करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि ये तो रोशनी के लिए है।
हाँ, बाबा ने भक्ति का बहुत विस्तार तो है।
बाबा ने कहा कि ऐसा बाप कभी देखा हुआ है कि जो ज्ञान रत्नों से बच्चों की झोली भरता हो, अब तक कभी देखा हुआ है क्या? बाबा ने प्रश्न पूछा हुआ है। फिर अभी तुम अपने हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि कौन से धर्म हर धर्म के। फिर बाबा ने कहा कि ये जो झाड़ है वह वैरायटी झाड़ है, जिसमें हर एक के फीचर्स अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य के जन्म के लिए राज्य करेंगे व स्वर्ग में विराजमान होंगे। फिर बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इतनी बड़ी अथॉरिटी है लेकिन फिर भी कोई भी अहंकार नहीं है बाबा को।
बाबा ने कहा कि बाप हमारा बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग की जो बादशाही होगी वो हम बच्चों के लिए ही होगी।
ओम शांति।